ओम शांति। 2020 विदाई ले रहा है और 2021 आ रहा है। आज बाबा ने कहा कि अपनी जांच करो, कोई अवगुण तो नहीं है, श्रीमत के वर खिलाफ कोई कर्म तो नहीं करते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, कल्प बीता, युग बीते, कई वर्ष बीते, महीने बीते, फिर पखवाड़े बीते, सप्ताह बीते, दिन बीते और घंटे बीते, मिनट और सेकंड भी बीत रहे, पल पल जो बहुत कीमती है। बाबा कहते हैं संगम युग में एक सेकंड में बहुत पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। समय दिन प्रतिदिन नाजुक होता जा रहा है, वो तो हम सभी इस चीज से अवगत हैं। आज भी बाबा ने कहा कि दुनिया में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाएंगी और बिगड़ रही हैं, देख रहे हैं हम सभी। जो भी भगवानुवाच भविष्यवाणियां हैं वो हम सबके समक्ष दिन प्रतिदिन साकार रूप में हमको दिखाई दे रही है। तो यह हम सबको बहुत महत्वपूर्ण खजाना मिला हुआ है, समय का खजाना। अगर हमने अभी इस खजाने का सदुपयोग नहीं किया तो हमको बहुत पछताना पड़ेगा, जार जार आंसू बहाने पड़ेंगे, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। लेकिन उस समय कहा जाता है अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुगे खेत। हमारे पास कितना वक्त है और समय बार बार हमको क्या आवाज दे रहा है, वक्त की क्या आवाज है और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं। भगवान को हम बच्चों के ऊपर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है कि संसार को परिवर्तन करने की जिम्मेवारियां यही बच्चे पूर्ण करेंगे। चाहे कोई इस ब्राह्मण माला का लास्ट नंबर का बच्चा भी है लेकिन उसके ऊपर भी भगवान को बहुत फेथ है। तो हम सब आत्माओं का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाबा ने कहा ना माया कभी कभी सुला देती है, अर्थात हमने खुद ही अभी भी माया से दोस्ती छोड़ी नहीं है। अभी भी हमारा भगवान के प्रति प्यार जो होना चाहिए, जो लगन बढ़नी चाहिए, जो एक अंदर में तड़प होनी चाहिए, जो एक जिज्ञासा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं भी वो भी कम है। वो आखिर उसकी क्या कारण है, क्यों कम है, क्यों पुरुषार्थ की तड़प हमारे भीतर में वो धधक नहीं रही है। बहुत सारी बातों से हमने अपने मन को शायद कहीं ना कहीं ढीला छोड़ के रखा है। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर तो खुशी के ढोल बजने चाहिए, कपारी खुशी चढ़ी रहनी चाहिए, तुम्हें गुदगुदी होनी चाहिए। वो चेहरा बताएगा कि सचमुच अंदर में खुशी के ढोल बज रहे हैं। अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है तो हम श्रीमत के वर खिलाफ है, अपनी जांच नहीं कर रहे हैं। हम शायद दूसरों की जांच करने पर तुले हुए हैं कि वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो बार बार कदम कदम पर बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपनी जांच करो। एक होता है चार्ट लिखना जो हम रात को लिखते हैं, लेकिन कदम कदम पर हमारा चार्ट जो है स्वयं ही हम जांचते रहे उसको। कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक पल भी अगर हमारा भगवान के प्रति, भगवान से अगर तार जो जुड़ा हुआ है अगर उसका कनेक्शन टूटा तो गए काम से। बाबा ने कहा तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नाता नहीं है। लेकिन हमने नाते तो बहुत जोड़ के रखे हुए हैं। इस मधुबन के बेहद के घर में, बेहद के यज्ञ में एक जो सेवा का बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है हम सबको, चाहे सेवादारी बनकर भी आते हैं, लेकिन जितना समय मधुबन में रहते हैं उतना समय तो मधुबन की ही दिनचर्या होनी चाहिए। घर के गोरख धंधे तो सब है नहीं इधर, तो उतना समय हम जांच लें कि सचमुच यहां आकर हम क्या कर रहे हैं। सवेरे से लेकर शाम तक कहां कहां हमारा समय जा रहा है। सेवाएं तो हमको निर्विघ्न बनाती हैं, लेकिन सेवाओं के साथ ज्ञान और योग का बल चाहिए। अगर ज्ञान और योग का बल नहीं है तो उन सेवाओं में खुशी तो रहेगी लेकिन वो टेम्परेरी खुशी रहेगी। सदाकाल के लिए वो सेवा हमारी हड्डियों को नरम नहीं करेगी। वो सेवा की दुआएं, वो सेवाओं का बल तभी फलीभूत होगा जब हम उसमें ज्ञान योग का मिश्रण करेंगे। जैसे डॉक्टर अगर दवाई देता है तो सारी दवाइयां इकट्ठी थोड़ी नहीं खाते हैं, उसके अनुसार चलना पड़ता है। उसी तरह भगवान की श्रीमत अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। इतना सुंदर हमको समय मिलता है मधुबन में, साकार रूप में चारों धाम की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां सवेरे शाम अमृत वेला अनुमा शाम योग करने का पदमा पदम सौभाग्य मिला है। इतना पवित्र वातावरण मिला है, तपस्या के वाइब्रेशन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं निरंतर। स्वयं भगवान की नजर इस यज्ञ पर है, तो क्या हम इस भूमि का उतना महत्व देकर इस जो हमको थोड़ा सा समय हमको सेवा के लिए यहां लॉटरी के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम स्वयं को उतना महत्व दे रहे हैं, समय को उतना महत्व दे रहे हैं? अगर अभी हमने अपने आप को नहीं भरा तो फिर कब भरेंगे? बाबा ने इस सीजन की जो 24 नवंबर की मुरली थी जो वीडियो रिकॉर्डेड, उसमें कहा कि अचानक होना है, समय अचानक होना है, हालातें बदलनी हैं, इस बात को हल्का नहीं लो। और अचानक हो ही रहा है। चलो संसार की परिस्थितियां छोड़ दीजिए, विनाश छोड़ दीजिए, लेकिन आज का दिन हमारा तो विनाश हो गया ना। जो आज हमारे पास 24 घंटे थे, दिन में जितना भी टाइम था, कहां है वो? अभी हमारे हाथ में है, वो वक्त चला गया, वो वक्त विनाश हो गया अभी, और अगले कल्प में फिर वैसे बीतेगा वो। और जब ये स्मृति आएगी तो अंदर में दिल फाड़ फाड़ कर हम खुद रोएंगे। तो समय बहुत बड़ी संपत्ति है, अमूल्य चीजें। बाबा ने कहा उस दिन मुरली में, ये दो अमूल्य चीजें हैं, समय और संकल्प। इस अमूल्य खजाने को हम कितना यूज कर रहे हैं, उसको कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना फायदा ले रहे हैं? भगवान का भी सहयोग तभी मिलेगा, उसकी मदद तभी मिलेगी जब हम उसके कहे अनुसार चलेंगे। अगर थोड़ा भी खिलाफ हैं तो कैसे मदद करेगा? जबरदस्ती तो वो कर नहीं रहा है, जबरदस्ती भी करेगा लेकिन लास्ट में जब बाबा कहेगा तो तुमको मार के भी ले जाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम हो गया अब तो। जैसे मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं और उस फैमिली को, माँ बाप और बच्चों को कहीं जाना है और ट्रेन कहीं जाने वाली है, शाम को 4 बजे का टाइम है, तो बच्चे सवेरे खेल रहे हैं, उस समय माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, पता अभी वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ जाएगा ट्रेन जाने का, तो माँ बाप उनको कहेंगे भाई तैयार हो जाओ अभी जाना है, लेकिन बच्चे फिर भी खेल रहे हैं, 2-4 घंटे रह गए, फिर माँ बाप और जोर डालेंगे तैयार हो जाओ, अचानक होने वाला, अचानक आ जाएगी ट्रेन, नहीं पहुंच पाएंगे, फिर समय से पहले रेडी होना पड़ेगा। बच्चे फिर भी नहीं सुन रहे हैं, अब लास्ट मोमेंट में थोड़ा ही टाइम रह गया कुछ मिनट, और माँ बाप को लेके जाना, तो क्या कहेंगे माँ बाप? उसमें प्यार करेंगे? बच्चों को मार मार के भी ट्रेन में चढ़ा के ले जाएंगे? तो वही हम सब की ऐसी हालत ना हो, बाबा तो नहीं मारेगा लेकिन हमें स्वयं हमारे कर्म ही हमको जीते जी मार देंगे, जीते जी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि अहो भगवान मिला जिसके लिए पूरा संसार तड़फ रहा है, इतनी भक्ति पाठ पूजा जप तप गंगा स्नान तीर्थ यात्राएं कर रहा है, कितने धक्के खा रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहा है, वो फिर भी भगवान को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं फिर भी, और हमको मिल गया, कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। उसके बावजूद भी हम स्वयं के प्रति सावचेत नहीं रहे, सावधानियां नहीं बरते, सदा जागृति ज्योत नहीं रहे, तो हमको क्या कहा जाएगा? इसलिए स्वयं की जांच करनी है, जितना समय हमको मधुबन में मिला हुआ है, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है, तो जितना समय मधुबन में रहते हैं उतना समय हमको पूरा पूरा इसका फायदा लेना है। बाबा ने उस दिन भी कहा था मुरली में, सीजन की पहली मुरली जो थी, कि अपना भी फायदा है और दूसरों का भी फायदा है, किसमें? अपने मन को बिजी रखने में। और आज का स्लोगन भी था, प्रधान में भी था बिजी की बात, क्या था स्लोगन आज? क्या स्लोगन था? हाँ, सेवाओं में उमंग उत्साह है तो छोटी छोटी बीमारियां बीमार जो जाएंगी, तो सेवाओं में अगर बिजी रखने का हम प्लान बनाते हैं तो बीमारियां सब, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाएगा हमारा उधर, प्राप्ति बहुत बड़ी है तो छोटे की तरफ थोड़ा ध्यान जाएगा, छोटी मोटी समस्या तो ऐसे खत्म हो जाती है। जैसे क्रिकेटर जब खेलते हैं या बड़े बड़े खिलाड़ियों की आप जीवनी देखेंगे तो दौड़ लगा रहे हैं, पांव में कुछ चुभ गया है, वो खून बह रहा है वहां, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, क्योंकि पता समय हमारा अभी हमारे हाथ में, पूरा दांव पर लगा हुआ है उनका पूरा अभ्यास, कितने सालों का कितने वर्षों का तप उनका वहां लगा हुआ उस ग्राउंड में, युद्ध के मैदान में। उसी तरह हम भी युद्ध के मैदान में, तो भगवान के महावाक्य हमारे लिए एक संजीवनी है, अगर हम उस संजीवनी बूटी को अपने पास नहीं रखेंगे तो मूर्छित ही रहेंगे, सुरजीत कैसे होंगे, खुशी के डोल कैसे बजेंगे अंदर में? तो हमको समृद्धि रखना है, उसमें बिजी रहना है, और वरदान में बिजी की बात थी कौन सी? मुरली को याद रखना बहुत जरूरी है। इसी सीजन की पहली मुरली में बाबा ने लास्ट में एक पैरा बोला था बहुत इंपॉर्टेंट, और मुरली के बारे में था वो, हाँ, कहना सोचना और करना एक समान। हाँ, तो उन बच्चों के संस्कार भी बाप समान होंगे, गुण कर्तव्य बाप समान होंगे, ऐसे बच्चे विचित्र खेल नहीं खेलेंगे, वो मनसा सेवा में बिजी रहेंगे। उनको याद रहेगा कि हमारा अभी वानप्रस्थ अवस्था का समय है, तो हम थोड़ा स्मृति में रहेंगे, उस दवाई को अंदर डालेंगे नहीं तो काम कैसे करेगी वो, हमारे मन की टेंशन फ्री कैसे होंगे? जैसे बाबा ने कहा तुमको टेंशन फ्री होना है, तो खुद ही हम टेंशन में जी रहे हैं, दूसरों की टेंशन का हम खत्म करेंगे? तो टेंशन फ्री होने के लिए तो हमको दवाई मिली है, ज्ञान की दवाई, उसी का तो इंजेक्शन मिला हुआ है, उस इंजेक्शन को हम लगा नहीं रहे तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो इस सीजन की मुरली, पहली मुरली में बाबा ने लास्ट में पार्टियों से मुलाकात करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य बताया था, कौन सा था? मुरली से संबंधित। बाबा ने कहा था मुरली मुरली मुरली, मिस नहीं करना उसको, एक दिन भी मिस नहीं करना। तो हम भले हमने सबने सवेरे सुनी है, लेकिन जीवन में सारे दिन में हमारे जीवन में कितनी आई है वो, उसको हमने कितना याद किया, कितना वो हमारे कर्मेंद्र में समाई है, उसको हमने कितना चबाया है खाया है, उसको कितना उगारा है, कितना उसका मनन चिंतन किया है। थोड़ा थोड़ा तो करें, कम से कम कदम तो एक आगे रखें, माँ बाप फिर पकड़ने अपने आप ही आ जाएंगे, हम कदम ही नहीं खुद रखेंगे माँ बाप भी कैसे आएंगे, टीचर भी तो उसी की सहायता करेंगे ना, जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़े तो कम से कम स्कूल में तो आए, थोड़ा तो उसके टीचर को होमवर्क तो करे, तभी तो टीचर को थोड़ी दया आएगी। तो बाबा ने कहा था मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, अगर मुरली मिस की तो बाप का दिल तख्त नहीं मिलेगा, तीन तख्त के मालिक नहीं बनेंगे, दो तख्त के मालिक बनेंगे वो भी यथाशक्ति। तीन तख्त कौन कौन से? एक बाप का दिल तख्त, और दो और एक भविष्य का तख्त, और तीसरा वो सबसे पहला वैसे स्वराज्य का तख्त। तो दो तख्त यथाशक्ति मिलेंगे, अर्थात स्वराज्य के तख्त पर भी रहेंगे, भविष्य का भी मिलेगा, लेकिन बाप का दिल तख्त नहीं मिलेगा जो बच्चे मुरली मिस करेंगे, अर्थात बाप के प्यार से वो वंचित रहेंगे। फ्यूचर का तो छोड़ दीजिए, अभी ही परमात्म प्यार की महसूसता अगर फीलिंग नहीं आ रही है, इट मीन्स इसका अर्थ यह है कि हम कहीं ना कहीं उसकी श्रीमत के बर खिलाफ है, ध्यान नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा अटेंशन देना, थोड़ा सा ही, बूंद बूंद से तालाब भरेगा। रोज थोड़ा थोड़ा अटेंशन देंगे, हम कभी खुद ही सोचते हैं कि जब से हम ज्ञान में चले हैं आज तक, अगर रोज का भी एक एक शब्द याद रखते कितने शब्द हो जाते आज तक। मान लीजिए मधुबन में आप 2 महीने 3 महीने सेवा में रहते हैं, 90 डेज, अगर 90 दिन में 90 गुण आ जाए, रोज का एक ही गुण केवल, चलो 2 दिन में 1 गुण, तो 45 गुण हो जाएंगे। चलो 16 ही गुण रखो, सर्वगुण संपन्न बन के निकलेंगे गेट के बाहर इधर से, और जाते सबको साक्षात्कार हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, देवी देवता अवतरित हो रहे हैं। तो कितने गुणों का हमारे में समावेश हो जाएगा, है ना? बाहर लगे 36 गुण, 36 गुण है ना बाहर, वो सारे अंदर में समा जाएंगे। कौन कौन से 36 गुण याद है किसी को? नहीं, पहले गुण, यहां 36 गुण का लगा हुआ ना हिंदी इंग्लिश में, हाँ, दिनचर्या के बाजू में, दरवाजू में, ये एंटर करते ही दरवाजा, तो 36 गुण है। आप योग में बैठे बैठे वो भी याद करो ना, तो लगेगा हाँ हमारे में आ रहे हैं, बाबा मदद कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? हैं? याद स्वरूप त्याग, वो तो गुणों का त्याग हो गया, लग रहा याद नहीं आ रही हमको तो। अवगुणों का त्याग, वो तो आज के मुरली में था ना, तो याद करने की बड़ी सरल विधि है उसकी, रूहानी सर्विस करनी है। हाँ, वो आज की मुरली में था, जो बात धारण करने लायक उसको छोड़ देने का, वो हमारे लायक ही नहीं है, काम की नहीं है, उसमें ना हो जाए, अर्थात घाटा ना पड़ जाए। तो 36 गुण याद करने सभी को, अभी हमारा एक स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, इतनी ऊंची यूनिवर्सिटी हमको दाखिला मिला है, भगवान ने हमको दाखिला किया है, संसार में दाखिला लेने के लिए कितना माथापच्ची करनी पड़ती है, फिर भी वहां एडमिशन नहीं मिलती है, और हमको सहज एडमिशन मिलेगी इसलिए हम ध्यान ही देते हैं, इसलिए थोड़ी मार पड़नी चाहिए अपने को। स्कूलों में मार पड़ती, कैसे बच्चे होमवर्क करके आते हैं। तो 36 गुण सबको याद करने हैं, सिंपल है, अल्फाबेटिकली याद करो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। 36 गुण है वो, अथक, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, अंतर्मुखता, अनुशासन। ये जैसे अ से 5 हो गए, ऐसे स से 11 है, स्नेह, सहयोग, सादगी, संतुष्टता, सहनशीलता, श्रेष्ठता, शालीनता, ऐसे स से याद करने के। ऐसे नियमितता से, न से नम्रता, न्यारापन, निर्भयता, नियमितता, निश्चिंतता, निरंकारिता, ईमानदारी, उदारता, यथार्थता, रहमदिल, श्रेष्ठता, ऐसे याद करो सारे याद, गंभीरता, गुणग्राहकता, रमणीकता, धैर्यता, दृढ़ता, सब याद हो जाएंगे, दूरदर्शिता, यथार्थता, एक्यूरेसी, सबसे पहले ऊपर वही लिखा हुआ है। हाँ, पहले याद ही तो होनी चाहिए, धारणा अपने आप होते रहेंगे। चीज हमने रख ली, आप कपड़े की अलमारी में कहीं गोलियां रख दो, फिनाइल की गोलियां, तो उसकी खुशबू अपने आप ही आती है। हमने गुण बुद्धि में रख दिए, वो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएंगे, लेकिन हमने रखे ही नहीं बुद्धि में, तो कहां से उसकी खुशबू आएगी। बाबा ने कहा खिला हुआ कमल पुष्प, सीजन की मुरली अभी थोड़ा दिन पहले गई है 24 नवंबर की, टेंशन फ्री, अर्थात खिला हुआ कमल पुष्प के समान गुलाब के फूल की तरह चेहरा दिखाई दे, तो कब दिखाई देगा? पहले उसका एसेंस तो रखेंगे ना, तभी तो उसकी खुशबू लगा दे तो अपने आप आती जाती है वो, उसको करना थोड़ा कुछ पड़ता है। तो ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे, अपने आप ही आता जाएगा, अपने हमारे कर्म इंद्रिय में समाता जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है। इस सीजन में बाबा ने कितना होमवर्क दिया है, बाबा ने पहली मुरली में कहा था मन को जितना व्यर्थ में लगाते हो, व्यर्थ को छोड़ मन सा सेवा में लगाओ, तो खुद का भी फायदा और औरों का भी फायदा है। फायदा ही फायदा है उसमें। तो व्यर्थ के हमारा तो मन चलता रहता है, तो इट मीन्स के चिंतन करने की शक्ति है, हम समर्थ में नहीं लगा रहे हैं। तो व्यर्थ को छोड़ समर्थ की तरफ हमें अपने मन को लगाना है। स्वराज्य अधिकारी के तख्त पर बैठो, तो समय हमको बहुत आवाजें दे रहा है, भक्त की आवाज है, क्या क्या करना है। एक स्वयं की प्लानिंग बनानी है, जो बीत गया अभी भी इस साल के 19 दिन बाकी हमारे हाथ में है, 18 दिन है, 18 में 18 अध्याय पूरे कर देने के, लास्ट में नष्ट मुहार होके बाहर निकलना। वो प्लानिंग बनानी है खुद ही कि क्या करना है। मधुबन में कम से कम यहां जितनी भी आसपास की शिक्षाएं लिखी हैं उनको याद करो, शांति स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है, आंगन में बाहर क्या लिखा हुआ है, भंडारे में जाते तो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ते चलो। मुरली के कम से कम 2-4 पॉइंट याद रहे। तो सबसे पहली बात जो हम मुख्य रूप से हमको क्या करना है, अटेंशन रखनी स्वयं के ऊपर। सबसे पहली बात है कि अभी आवाज से परे जाने का समय है। बाबा ने कहा था मनसा सेवा से ही दूसरों को तुम अनुभव कराओगे, जैसे वाचा सेवा से दूसरे समझ जाते हैं ऐसे मनसा सेवा से ही दूसरों को महसूसता कराओगे, उनको शक्तियों का दान दो, खुशी का वरदान दो। तो ये कब होगा, जब हम अपनी मनसा सेवा को शक्तिशाली बनाएंगे, और वो तब होगी जब हम आवाज से परे रहने का अभ्यास करेंगे। जो हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, या बोल भी नहीं रहे हैं, जो सोच रहे हैं अनावश्यक रूप से, अपने चिंतन को बढ़ा ही रहे हैं बिना मतलब के, और बहुत सारी बातें हमने अपने जीवन को अगर हम देखेंगे एक दिन के अगर जांच करें तो दिन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही सोचते रहते हैं, चाहे स्वयं के प्रति चाहे किसी के प्रति, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, सारहीन है वो। तो ऐसी सब बातें छोड़ देनी है, अपने मन को आवाज से परे ले जाना है, तब हमारी मनसा शक्तिशाली होगी, तब हम स्वयं भी महसूस कर सकेंगे बाबा की शक्तियों का, उसके प्यार का, और दूसरों को महसूस करा सकेंगे। तो स्वयं को आवाज से परे ले जाने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा यह अभ्यास ही अंतकाल में काम आएगा, लंबे समय का अचल अडोल शुद्ध संकल्प, लंबे समय तक इनके हम अभ्यासी बनेंगे तो अंत में भी ये हमारे काम में आएंगे। इस सीजन के पहले मूल्य का होमवर्क था, तो थोड़ा बहुत तो हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। दूसरी बात, बिजी रखना अपने को, मन को बिजी रखना है, मन की प्लानिंग तैयार करनी है कि सारे दिन में हमको क्या क्या सोचना है। सोचना अर्थात कुछ सामान ले लिए, उनका अभ्यास करना है, मनसा सेवा की, जैसे बाबा ने कहा बीच बीच में सारे दिन में थोड़ा भी टाइम मिलता तो मनसा सेवा से शक्तियों का दान दो, है ना, खुशी का वरदान दो। तो सारे दिन में वो कितना करते हैं हम, तो अपने मन को बिजी रखना है, नहीं तो व्यर्थ का अंबार हमारे अंदर आता रहेगा, तूफान आता रहेगा, और वो तूफान हमको ही धोखा देगा। कितनी बार जिंदगी में हमने धोखे खा लिए व्यर्थ से, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं सुधर रहे हैं, यहां आकर भी अगर सुधर नहीं है तो क्या करेंगे, बाहर कैसे सुधरेंगे। इस वातावरण में भी अब हम उसका फायदा नहीं ले रहे हैं, अपने को परिपक्व नहीं बना रहे हैं, तो फिर बाहर भी कैसे उसका अनुभव करेंगे। तो व्यर्थ को तलाक देके जाना है, और जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये तो इस स्थान को कौन सा वरदान मिला है, अगर व्यर्थ से मुक्त होना है तो हिस्ट्री हाल में, तो चारों धाम में हम क्या यात्रा करते हैं, या यहां रहते भी हम चारों धाम की यात्रा नहीं कर रहे हैं, बाहर में रहने वाले तड़फ रहे हैं बेचारे, चार धाम की यात्रा करें मन से करते हैं वो, लेकिन यहां रहते अगर स्थूल में भी नहीं कर रहे हैं तो क्या कहेंगे। भले 2-2 मिनट आके बैठिए, 5-5 मिनट आकर बैठिए, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घट भरे, पूरी पूरी तालाब जिसको बाबा कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन स्थानों का पूरा फायदा लेना है। इस यहां की माटी में कण कण में जर्रे जर्रे में ब्रह्मा की तपस्या के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, उसकी पवित्रता के वाइब्रेशन है, उसकी जो अंतिम अवस्था थी ब्रह्मा की, निराकारी निरंकारी निर्विकारी, उसका अनुभव करना है। स्वयं दादियों ने कितनी साधना किया, उस साधना का बल समाया हुआ इधर। मधुबन में रहना कितना बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अगर हमने थोड़ा भी टाइम वेस्ट किया तो उससे दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं है, और फिर सबसे ज्यादा सजा भी उन्हीं को मिलेगी। कि यहां रहकर भी हम अगर अपने जीवन को व्यर्थ की तरफ लगा रहे हैं तो हमको स्वयं को सावचेत रखना है। तो पहली बात, आवाज से प्रेरणा का अभ्यास करना है। ऐसी आलतू फालतू बातें सुननी नहीं है जो हमारे पुरुषार्थ को ग्रहण लगा दे, जो अंदर में गहरे जख्म है फिर से उनको हरा भरा कर दे। कितने जिंदगी में अनेक जन्मों में हमने व्यर्थ में बिताए हैं। अभी स्वयं भगवान का साथ मिला है, समर्थ बाप का साथ मिला है, उसका हम हाथ पकड़ के रखें। वो स्वयं अपना हाथ हमारे हाथ में दे रहा है और उसका हाथ छोड़ के हम किसी दूसरे का हाथ पकड़े, अर्थात मन का हाथ, मन से हमने किस किस को पकड़ के रखा हुआ है। तो सारे व्यर्थ को छोड़ देना है, यहां प्रतिज्ञा करनी है और वरदानी मुहूर्त बनना है। बाबा, हम बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? एक एक बच्चा वरदानी मुहूर्त बन जाए, अनुभव करें वो सामने वाला, अर्थात हमारे मुख से नपे तुले बोल निकले। ऐसे नहीं कुछ भी बोलते जा रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। तो स्वयं को परिवर्तन करना है, देखना है जो हमारे बोल 5 साल पहले थे क्या अभी भी वही है, या अभी भी वो लौकिकता वाले बोली है, अभी वो किसी को दुख देने वाले बोली है, या कुछ परिवर्तन हुए। बाबा ने कहा तुम हो रूप बसंत, तो क्या बसंत की जरा तरह हमारी वाणी में वो मिठास है, वो वरदानी बोल है, वो सुखदायी बोल है? तो स्वयं को चेक करना है। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए वक्त भी हमको आवाज दे रहा है, समय हमको आवाज दे रहा है। और शिकायतों से मुक्त होना है, ना किसी की अभी शिकायत करनी है, ना चित्त में कोई शिकायत भरनी है किसी की, क्योंकि स्वयं भगवान समझा रहा है। अगर भगवान के समझने पर भी नहीं समझ रहे तो हम किसको क्या समझाएंगे। इसलिए भगवान कहते साक्षी दृष्टा भाव, ऊपर बैठकर तो सब कुछ देख रहा ना। और अंत में सबसे जो हम जो फील करते हैं, सबसे जो कड़ा पेपर आता है स्वयं के संस्कारों का पेपर आएगा, दूसरों से नहीं आएगा, स्वयं के संस्कार ही। स्वयं के संस्कारों को एकदम कोमल बना देना है, एकदम परमात्म संस्कार बना देने हैं, एकदम शक्तिशाली देवता संस्कार बना देने हैं। बाकी तो जितने भी पेपर आएंगे, 5 विकारों का पेपर, चलो लंबे समय की तपस्या का बल होगा, प्रकृति के पेपर होंगे, भगवान की याद से जुड़े होंगे, लेकिन जो हमारे अंदर है, हमारे जो संस्कारों का बीज है जिनको हमने परिवर्तन किया, वो ही संस्कार उछल कर उस शराबी बंदर की तरह बाहर आएंगे। जो एक बंदर है जिसको शराब पिला दी जाए तो कितना उत्पात मचाएगा, पहले वो उत्पात मचा रहा है और ऊपर से उसने शराब पी ली और ऊपर उसके अंदर 3-4 आत्माएं घुस गई और, तो कितना उछल कूद करेगा। वही हमारे मन की हालत ऐसी ना हो, और ऐसी ही अभी तक भी हमको देखना कहीं है तो नहीं है वो, कि भगवान के महावाक्यों से, उसकी श्रीमत से कोसों दूर तो नहीं अनुभव हो रहा है, वो हमारे कर्मों से परिलक्षित हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, देखने से आ जाता है। तो हम स्वयं को जांच करना है कि अभी शिकायतों को खत्म करके भगवान का शुक्रिया करना है, अपने जीवन को भी देखना है कि सचमुच कितना भगवान ने इतना हमारा ऊंचा जीवन बना दिया, क्या क्या जीवन में दिया। बाबा ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने रखो, क्या क्या मिला। तो स्वयं की अपनी अपनी लिस्ट होनी चाहिए, एक स्वयं के पास खजाना होना चाहिए। बाबा ने उस दिन कहा ना, ये जो लास्ट मुरली चली, खजाने भगवान ने तुमको कितने खजाने दिए हैं, तुम खजानों को अपने पास संजो कर रखते हैं या खाली रखे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। तो शिकायतें खत्म, कंप्लेंट खत्म, अपने पुरुषार्थ में मस्त रहना, उसी में सुख है, उसी में हमारी प्रगति है, उन्नति है, उन्नति का अनुभव करना है। और अगर हम अपनी सेवाओं में बिजी रहेंगे, अपने पुरुषार्थ में बिजी रहेंगे, तो दूसरों से दुआएं हमें स्वतः मिलती जाएंगी। दुआओं के पात्र कब बनते हैं? जब किसी को सहयोग देंगे, और किसी को सहयोग भी तभी दे सकते हैं जब हमारे अंदर देने का स्टॉक होगा, तो ज्ञान गुण शक्तियां भरी होंगी हमने, तो दुआएं देने दुआएं लेने का समय है ये। कोई दे नहीं दे तो भी हमको देना है, कोई हमारा भला करे तो भी उसका भला, और नहीं करे तो भी उसका भला, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। इस सीजन की पहली मुरली, तुम बाप समान विश्व सेवक हो, जैसे बाप विश्व का सेवक है, तुम भी विश्व के सेवक हो, हम भी संसार के नौकर हैं, तो हमको वैसा ही करना है जैसे हमारा पिता करता है, हमारा बाप करता है। दुआएं देनी, दुआएं देनी। बाबा ने कहा चाहे रावण से कोई 10 गुना तेज क्यों ना हो, फिर भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। और ये शुभ भावनाओं का बल, शुभ कामनाओं का बल लंबे समय से जमा करने के बाद ही वो फलीभूत होता है। शुभ भावना कोई छोटी चीज नहीं है। जो हमको कटाक्ष कर रहा है, हमें कोई सहयोग नहीं दे रहा है, हमारे रास्ते में या समझ लीजिए वो विघ्न बन रहा है, उसके प्रति भी शुभ भावना कामना रखना। लेकिन हमने देखा रहती है, जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि हम एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही हाथ की उंगलियां हैं, क्यों नहीं शुभ भावना कामना रहेगी? रहेगी, जरूर रहेगी, काम करेगी। हर बाबा का बच्चा यूनिक है, हर एक में विशेषताएं गुण है, आज नहीं तो कल बदलेंगे सभी। तो एक एक हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले कर रहा है। फिल्म में सभी हीरो हीरोइन थोड़ा नहीं होंगे, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी हीरो हीरोइन है। तो हम अपने पार्ट को ऐसा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, जो हमारे कर्मों से ही दूसरों को बदलने की प्रेरणा, आज नहीं तो कल बीज तो अंकुरित होगा जरूर। तो ये देखना है कि दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। ईष्ट देव, बाबा ने कहा इसी सीजन की पहली मुरली में, आप बच्चों को पुकार रहे हैं भक्त, हे ईष्ट देव, ईष्ट देवियां, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। तो सारे दिन में ये हमको स्मृति रहती है कि हम सचमुच ईष्ट देव हैं। इस संसार की सर्व भक्त आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने हमको इस धरा पर भेजा हुआ है। हम अवतरित आत्माएं हैं। जो ऑफिस में जाता है, सवेरे घर से निकलता है, तो उसको पता होता है ऑफिस में हमको क्या क्या होम, क्या वर्क करना है, वो सारा वर्क उसी अनुसार करेगा। उसी तरह हम भी इस संसार में, इस बेहद के ऑफिस में अवतरित हुए हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, प्रकृति को पावन बनाने के लिए। बाबा ने उस दिन कहा ना, प्रकृति तंग कर रही है क्योंकि मनुष्य ने तंग किया हुआ है, लेकिन तुम बच्चों को पता है जो होगा अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तुम बच्चे प्रकृति को सत्व प्रधान बना रहे हो, तो प्रकृति भी हमसे क्या अपेक्षा रख रही है? तो क्या हम प्रकृति को भी पावन बनाने का पुनीत कर्तव्य कर रहे हैं? वो स्मृति हमको कर्तव्यों की बार बार उसकी जागरूकता बनी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते सदा जागती ज्योत बनो, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। ज्योति जग रही है, प्रकाश अपने आप ही जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। ज्ञान स्मृति में है, उसका स्वतः अपने आप वाइब्रेशन फैलेंगे, उसका प्रकाश फैलेगा। कोई ना कोई स्मृति हमें निरंतर बनी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर बननी चाहिए। फरिश्ता बनकर सकाश देनी है, यही समय है जो हम फरिश्ता बनकर सकाश दे सकते हैं। सारे कल्प में फिर देंगे कभी? भगवान इस समय हमको एंजल बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है, तो क्या हम वो फरिश्ता बनकर उसकी महसूसता करते हैं, फरिश्तेपन की? वो हम चमकीली ड्रेस पहनते हैं, योग के वो अनुभव करते हैं, और योग में बहुत अच्छे अच्छे कई बार विजन क्रिएट करने हैं। जैसे हम आज शाम को देख रहे थे योग में बैठे कि अपने मन को कैसे एकदम पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखें, तो ऐसे सोचने का जैसे हम सूक्ष्म बतन में बाबा ने हमारे हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं, स्थूल में भी। जैसे माँ बाबा मुरली में जिक्र करते हैं, अगर बच्चे भागते हैं तो उनको बांध दो, है ना। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी सूक्ष्म बतन में जाके जैसे बाबा ने हमारा मन पकड़ लिया, जैसे एकदम वो जा ही नहीं रहा कहीं, और बाबा हमारा पूरा ट्रीटमेंट कर रहा है जैसे। तो वहां हमको कन्वर्सेशन करनी है, रूरान करनी है, खाली एक एक ही संकल्प में नहीं बैठ जाना है, बातचीत करनी है। जैसे हमारे पास अगर कोई मेहमान आता है, एक घंटा हमको उसके साथ बिताना है, तो हम एक ही बात थोड़ा नहीं करेंगे, अपना टाइम निकाल के भी कितनी सारी बातें करेंगे। और जो सेवा निकाल के टाइम, जो सेवा करने के बाद भी आएंगे, तो सेवा की थकावट रहती है उसमें बात करने में कितना मजा आता है, थकावट और ही खत्म हो जाती है। तो अगर हम योग में बैठे हैं, सुस्ती आ रही है, अर्थात हमारी रूह हानि हो रही है उससे, वो तो हमारी थकावट उससे खत्म होती है। सेवाओं से थकावट नहीं होती है, सेवाओं में तो एनर्जी है, शक्ति है, ताकत है। अगर थकावट हो रही है तो वो सेवा हमने कर्ण करावन हार की स्मृति से नहीं की है। उस सेवा में मेरापन, मैंपन समाया हुआ है, बॉडी कॉन्शियस समाया हुआ है। आज ही मुरली में बाबा ने कहा, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सब कुछ करते हुए एक बाप की तरह बुद्धि लगा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है इसलिए सेवाओं में ताकत नहीं बढ़ती, शक्ति नहीं मिलती। नित्य सेवाओं तो हमको निर्बंधन बनाने वाली। बाबा ने कहा कि निर्बंधन बनाए तो अपने को ईश्वरी सेवा के बंधन में बंध, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो उन सेवाओं में भी हमको परमात्म याद का बल भरना है। वो सेवाएं सेवा नहीं रहे, वो सेवा याद योग जैसी बन जाए, योगमय सेवा हो जाए। निरंतर हमारा बुद्धि का तार जुटा रहना चाहिए, सूक्ष्म रूप से उसके साथ बंधे रहना चाहिए। चाहे वो संबंधों से याद करो, चाहे वो किसी तरीके से कर्ण करावनहार की स्मृति है, चाहे वो बाबा हमारे साथ है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे पास बैठा हुआ है, बाबा मेरे से करा रहा है, ये सारे संकल्प हमारे पास उस समय होने चाहिए। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, ये सब संकल्प कर्म क्षेत्र हमको यूज करने हैं, तभी तो हम बंधनों से मुक्त पाएंगे। तो हम जब योग में बैठेंगे तो वो योग में रस आएगा, मजा आएगा। सारे दिन में भले आधा घंटा भी रेस्ट कर दिया अच्छी तरह से, आधा घंटा अगर पर्याप्त नींद भी आ जाए, आधा पौना घंटा, वो भी बहुत होती है। तो यहां जो सौभाग्य मिला इसको ऐसे छोड़ना नहीं है। मधुबन में समझना है, मधुबन को भगवान के गोद में हम बैठे हैं, उसका हम कितना फायदा ले रहे हैं। उस दिन चार्ट दिया था यहां सबको भर के देना है, उस अनुसार चल रहे हैं सभी। जो यहां बैठे वो तो चल रहे लगता है, जो नहीं बैठे वो। तो सेवाओं में ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो तो एक बूस्ट का काम करती है, एक सुरजीत बना देगी हमको, मरे हुए में जान डाल देगी वो, उनमें दुआएं मिलती हैं, बल है उनमें। तो ये देखना है अपने को कि हमें दुआएं भी जमा करनी है, ईष्ट देव देवी बनकर हमको ये करना है। हाँ, और बताया फरिश्ता बनकर हमको सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठकर, जैसे बाबा ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं दोनों हाथ, है ना, और फिर ये छोड़कर अपना हाथ सिर पर रख दिया और ऊपर से शिव बाबा की सारी शक्तियां ट्रांसफर हो रही हैं, जन जन के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, मेरी आंखों में भगवान की शक्तियों का प्रकाश भर रहा है, लाइट माइट बन रही है, लाइट हाउस माइट हाउस बन रही है। नए नए संकल्प क्रिएट करने हैं, पुराने संकल्पों पर रोज एक एक भोजन करने पर आदमी बोर हो जाता है, इसलिए डेली तो यही लगता है, बार बार बोई तो मुरली, बोई तो मुरली है। मुरली में बहुत रमणीकता है, लेकिन वो तब होगी जब हम नए तरीके से सुनेंगे, उसी ढर्रे से नहीं, डेली 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 उसी ढर्रे नए तरीके सुनिए। उसमें होमवर्क निकालिए, कभी प्रश्नोत्तर निकालिए, कभी सोमान निकालिए, कभी इंग्लिश निकाल, परसों की मुरली में कितनी इंग्लिश थी। बाबा ने कहा आई एम एवर हैप्पी बट यू आर नॉट एवर हैप्पी, वाई, क्यों? हाँ, तो इंग्लिश के शब्द निकालने, कितना इंग्लिश का मूड था बाबा का उस दिन। तो बताया तुमको गुदगुदी होनी चाहिए, क्यों नहीं थी गुदगुदी? खुशी के डोल बजने चाहिए, कापारी खुशी चढ़नी चाहिए, सिर से नाखून तक वैसी खुशी चढ़नी चाहिए जैसे जिसका पति विदेश से आते तो गलियों में भावरी होकर फिरती है। वो था ना एक मुरली में, तो इतनी खुशी हमको चढ़नी चाहिए अंदर ही अंदर। वो उसको कहेंगे अतिंद्रिय सुख, जॉयफुल स्थिति, तो अंदर में अतिंद्रिय सुख की भासना हो। नहीं तो हमको संबंध खींचता रहेगा संसार, हमारे पीछे संसार चले, हम संसार के पीछे क्यों चले? हम संसार के लिए आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा देखना उठना, ये सब यूनिक होना चाहिए, परिवर्तन। पुरानी दुनिया से मर गए हम, जैसे पुरानी दुनिया से एकदम विस्मृत हो चुके हैं। बाबा ने बताया ना, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा पुरानी दुनिया से, केवल हमको पुरानी दुनिया के कल्याण करने के लिए ही वो ही कर्तव्य करने हैं, उसी के लिए हमको अपने मन की भूमि पर वैसे बीज रोपित करने हैं। और बाबा के दिल पर बैठे रहना है। बाबा के दिल पर कौन बैठता है? कौन बैठेगा? प्योर, हल्का, जो भारी वो थोड़ा बैठेगा। उसको अपने दिल में बिठाना है और हमको उसके दिल में बैठना है। इतना पवित्र दिल है, उस दिल में अपने को बैठाना है तो वैसी योग्यता भी चाहिए, वैसे लक्षण भी चाहिए, उतनी पवित्रता भी चाहिए, उतना योग बल भी चाहिए, उसका आकर्षण हो। काल के वरदान में था आकर्षण, तो ये देखना है। और क्या करेंगे? बहुत सारी बातें हैं, और क्या करेंगे? अपने मन को कुछ काम देना है, क्यों नहीं मन चलता है। इसलिए क्लास समझ के क्लास नहीं करनी, चर्चा, चर्चा में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। ज्ञानियों की चर्चा में अगर हम हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं। खाली योग करने से कुछ होने वाला नहीं है, बिना योग ज्ञान के योग करेंगे वो भी भारी करेगा, मन भारी हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। जैसे योग में भी क्या, अगर संकल्प नहीं चलेंगे तो क्या होगा, टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। कईयों को तो ट्रैफिक कंट्रोल भी बड़ा भारी लगता है, जो 43 सेकंड का होता है, उसमें भी हलचल में होते। उस दिन बताया ना सूर्य भाई जी ने क्लास में, ये ट्रैफिक कंट्रोल अगर हम नहीं कर रहे हैं तो माना हमको योग का रस नहीं है। अगर सवेरे शाम हम योग नहीं कर रहे हैं कोसों दूर है, हमको योग की अनुभूति का तजर्बा नहीं है, उसकी महसूसता नहीं है। योग में तो परम सुख है, योग अर्थात कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो योग क्या चीज है कि कुछ नहीं करना ही योग है। इस संसार के कर्तव्यों से खत्म, निवृत्त होकर बैठ गए, घर में सो गए। जैसे जैसे हम पूरे दिन में सेवा करते हैं फिर क्या होता है, रात को सो जाते हैं जाके, उसी तरह योग भी क्या है, जागृत अवस्था में सोना ही है। इस संसार से जैसे सोए हुए हैं और बाबा से जुड़े हुए हैं, और सोने से क्या होता है, आदमी फ्रेश हो जाता है। बाबा ने उस दिन बताया था अगर विकर्मों से बचना है तो सो जाओ एक तरीका बताया था बाबा ने, मुरली बताया था विकर्म नहीं होते हैं, लेकिन विकर्म भसम भी तो नहीं, वो भी तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, रात को सोते सोते बाबा को याद करेंगे तो हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, देवी देवता दिख जाए। याद करते करते सुदर्शन, हाँ सुदर्शन चक्कर फिराओ और फिर सो जाओ, फिर नींद भी नहीं आएगी, कहाँ आएगी, चक्कर फिरेगा तो बाबा की युक्तियां हैं कि मेरे साथ इनका लिंक जुटा रहे, इनके विकर्म भस्म हो जाए। आज की मुरली में था ना, मुरली की स्टार्टिंग ही थी कि तुम्हें गीत सुनने की जरूरत नहीं है, एक गीत तो भक्ति वालों के लिए है, लेकिन बाप ने तुम बच्चों के लिए भी बनवाए तो बाबा रमणीक है, तो ज्ञान को भी रमणीकता से ग्रहण करना है। सूखा सूखा नहीं, अनेक जन्म तो कैसा जीवन रहा, अभी रमणीकता से जीवन को भर देना है। बाबा भी बहुत रमणीक थे, है ना। एक बार चक्करधारी बहन जी सुनाते हैं, बाबा यहां खड़े थे बाहर और एक पलम फल था तो उसको चूस रहे थे इधर से, तो था एक ही फल। अब उधर से आगे चक्करधारी बहन जी तो बोला आओ बच्ची मैं इधर से चूस रहा हूं, तुम इधर से चूस पीछे से तो कितना अपनेपन के महसूस था। तो खाली ज्ञान से भी अपनेपन की महसूसता नहीं आएगी, बल्कि हम अपने व्यवहारिकता में भी उस ज्ञान को समा दें। परमात्म ज्ञान हमारी व्यवहारिकता में आ जाए तो परिवर्तन ना हो ही नहीं सकता है। बाबा ने इस सीजन की मुरली में कहा ना, बाप को सदा साथ रखो तो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में ना रहे, ये हो ही नहीं सकता है। कितनी सहज युक्ति बताई स्वराज्य अधिकारी बनने की, बाप को सदा साथ रखो तो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमने बाबा को साथ नहीं रखा है। बाबा को साथ रखना अर्थात उसकी शिक्षाओं को साथ रखना, उसकी जो श्रीमत है, उसकी जो अनेक प्रकार की सावधानियां हैं, वो साथ साथ उनको हम अंदर ही अंदर चिंतन करते रहें। जैसे हम पूरा दिन परिवार के साथ थोड़ा नहीं रहते हैं, जिसके साथ हमारा प्यार होता है जास्ती उसको हमेशा साथ थोड़ा रहता वो, लेकिन उसकी स्मृतियां हमारे साथ में रहती हैं, वो हमारे मांस पटल पर घूमती रहती हैं बार बार। जिसके साथ दोस्ती होती क्या होता है, उसकी हर चीज अच्छी लगती है, तो हमारा खुदा दोस्त बना हुआ है, उसकी हर बात अच्छी रहे, उसकी हर बात याद रहेगी तभी हमको अच्छी लगेगी, अगर याद ही नहीं तो अच्छी कैसे रहेगी, अच्छी कैसे लगेगी वो। तो ये जीवन को रमणीक बनाना है, भर देना है रमणीकता से, और सोमान में रहना है, अपने सोमान की सीट से उतरने का प्रयास नहीं करना कभी भी। अगर हमने अपने सोमान से उतरने का प्रयास किया सीट से, तो माया तो पहले बैठी है, कब्जा कर लेगी, सुला देगी। माया घड़ी घड़ी बाबा कहते क्या करती है, माया बड़ी दुस्तर है, माया के तो बड़े दाव पेच हैं, हजारों दाव है उसके, कमजोर संकल्पों की रचना कर देगी, वो उत्पत्ति कर देगी। आज के मुरली के प्रधान में था, जो कहना करना सोचना होगा जिनका एक समान, वो व्यर्थ और कमजोरियों को समाप्त कर देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, तो मुरली जो एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का सहज परिवर्तन करती है, जीवन में खुशियां भर देती है, हमारे मन बुद्धि को चार्ज कर देती है, हमारी आंखें खुली रखती हैं, हमारे मन बुद्धि को फ्रेश करती है, उमंग उत्साह से भरती है, खुशियों के पंख लगा देती है, अंदर में ढोल बजते रहते हैं। तो मुरली से क्या क्या फायदे खुद लिखिए, चिंतन कीजिए। ये बहुत समय कीमती हमारे वक्त हाथ में बहुत थोड़ा समय रहा हुआ अभी, अगर इस समय को हमने ऐसे गवा दिया तो स्वयं से हमको स्वयं ही जैसे हम धोखे में जी रहे हैं, गलत फहमी के शिकार हैं हम। भले बाहर से तो हम बीके बने हैं, बैज लगा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, खाना पीना शुद्ध है, एक आत्म संतोष का जो अंदर में भाव जागृत होना चाहिए वो कहां तक है, वो हमको स्वयं को ही जांचना है। आत्म संतुष्टि होनी चाहिए अंदर से कि सचमुच बाबा का ज्ञान उसका प्यार हमको मिल रहा है, कुछ तो जीवन में परिवर्तन हो रहा है। भले जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, मन की स्थिति ऊपर नीचे होगी, लेकिन बाबा ने कहा ना, दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना, हार्ट फेल नहीं होना कभी भी। युद्ध के मैदान में आए तो माया नहीं मारेगी ऐसा थोड़ा नहीं होगा, माया भी मारेगी, लेकिन वो एक मारेगी हम 10 मारेंगे। अगर वो एक संकल्प हमारे मन में क्रिएट करती है तो हम 10 संकल्प प्योरिटी के मन में क्रिएट कर दे, हम 10 मन अपने अपनी सीट पर 10 मन लेकर बैठ जाए, 10 अस्त्र शस्त्र सामने से फेंक दे, तो बेहोश माया तुम्हारी पड़ी है, वो तो कागज के शेर की तरह मरी हुई चींटी है बाबा कहते। तो अपने जीवन को उमंग उत्साह से भरपूर रखना है, जो समय कौन सा चल रहा है, वक्त की क्या आवाज है वो हमको सुननी है, स्वयं के जीवन को बहुत 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 महान बनाना है, क्योंकि अगर स्वयं को परिवर्तन नहीं करेंगे तो संसार को परिवर्तन करने का कार्य कैसे पूरा करेंगे। इसलिए अपने जीवन को साधारण समझना, विशेषकर आप मधुबन में आए हैं तो मधुबन में एक एक सेकंड बहुत बहुत कीमती है, इस समय को पूरा पूरा सफल करना है, ताकि जब भी यहां से आप वहां सेवा स्थान पर जाएंगे तो वहां भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को अनुभूति हो कि ये तो अभी फरिश्ते यहां अवतरित हो गए हैं, ऐसा नहीं कि पहले थे जो वैसे देखे। हम दिन प्रतिदिन हमारा उत्थान होना चाहिए, परिवर्तन दिखाई देना चाहिए स्वयं में। अच्छा, ओम शांति।